ओम अग्निहांतिमिरादर्शिज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेव बोधये स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वदानिका जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सद्वैत गदाधर श्रीवासवे गौरभक्तो हरे कृष्ण तो अभी तक हमने पांचवें अध्याय के 14 श्लोक लिए हैं डिस्कशन में, जिसमें भगवान बताते हैं कि किस तरह से जो बुद्धिशाली जो ज्ञानी होता है वो अपने आप को शरीर नहीं मानता और इस तरह से वो नौ द्वार वाली जो शरीर है उससे अपने आप का पहचान नहीं करता। नव द्वार पूरे देही शरीर के, इसको एक शहर माना गया है नौ द्वार वाला, जिसका हमने बात किया था कि दो आंख दो कान जीवा दो नॉस्ट्रिल और उत्सर्जन और प्रजनन, ये है नौ द्वार। तो ये नौ द्वार वाला जो शरीर है उसके अंदर रहने वाला व्यक्ति अपनी पहचान अपने शरीर के साथ नहीं करता और इसलिए वो फंसता नहीं, वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं ये शरीर हूं। हमने एग्जांपल लिया था उसका, क्या कोई व्यक्ति शहर में है, अब शहर में इतने बड़े शहर में कुछ भी होता है लेकिन आप इससे डिस्टर्ब नहीं होते हो क्योंकि आप अपने आप को शहर नहीं मानते हो, आप उस शहर का एक रहने वाले हो, शहर में रहने वाले हो। इस तरह से हम ये शरीर में रहने वाले हैं लेकिन ये शरीर नहीं है। और जब इस भावना से वो जब काम करता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता, अन्यथा हमने कब को एग्जांपल लिया था भौतिक समाज में हर एक वस्तु संकल्प और विकल्प और हर एक वस्तु प्रॉब्लम वाली है, अनफॉर्चुनेट वाली। एग्जांपल आपको दिया था कि आपको एक चीज अच्छा मिलेगा दूसरा बुरा मिलेगा, एक चीज अच्छा मिलेगा दूसरा बुरा मिलेगा। हमने आपको एग्जांपल दिया था अनफॉर्चुनेटली। तो सब जगह ऐसी सिचुएशन है, सब जगह के अनफॉर्चुनेटली अभी आज कोल्ड वेव शुरू हो गया लेकिन फॉर्चुनेटली हम कमरे के अंदर बैठ पाए हैं दरवाजे सारे बंद करके। अनफॉर्चुनेटली लेकिन थोड़ी देर में हमें बाहर जाना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली मेरे पास एक स्वेटर था तो मैंने उस पहन लिया। सो देयर आर ऑलवेज सिचुएशंस लाइक दिस कि लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में ये ऐसा ही चलता है, कहीं पर भी पेन प्लेजर नहीं है। लेकिन जब कभी भी कोई व्यक्ति इसकी सत्यता को जान करके फिर भी अगर वो हरि भजन में जुड़ता नहीं, भगवान की सेवा में जुड़ता नहीं, उसको जानिया सुनिया अर्थात जानबूझ करके हम इसको ग्रहण कर रहे हैं, जानबूझ करके। सो ये बात हमने संस्कृत में बताई थी और फिर 14 नंबर के श्लोक में था कि आत्मा जो है वो ना तो कर्म को सर्जन करता है ना ही दूसरों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, बल देता है, या फिर ना ही कर्म का परिणाम का सर्जन करता है। ये तीन चीज आत्मा नहीं करता, ये चीज हमने टेक्स्ट नंबर 14 में पढ़ा था। तीन चीज बताइए ना ट्रांसलेशन में। ना 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 तीन बार आता है, क्या बताए पढ़िए ट्रांसलेशन।
शरीर रूपी नगर नो स्वामी एवं देह धारी जीवात्मा कर्म उत्पन्न करतो नथी के लोकोने कर्म करवा प्रेरित करतो नथी अने कर्मना फळनु सर्जन पण करतो नथी।
हाँ, ये तीन चीज है। પડી પડી
તો ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા જ થાય રહ્યા કરે છે.
યસ, તો પ્રકૃતિ જો હૈ उसके वश में हम रहते हैं. जैसे हमने आगे एक बार चर्चा किया था कि जब कभी सत्वगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तो हम अच्छा है दान कर्म करने का सोचते हैं, पुण्य कर्म करने का, जल लुट के स्नान करने का सोचते हैं. सत्वगुण बढ़ जाता है तो अभी कभी रजोगुण बढ़ जाता है तो हम धन कमाने के लिए पागल बन जाते हैं, इंद्रिय भोग करने के लिए पागल बन जाते हैं. कभी तमोगुण बढ़ जाता है तो बस आज कुछ नहीं करना है, आज आलस आ रही है, क्रोध आता है, आलस्य आती है, अज्ञानता रहती है. लेकिन ये प्रकृति के तीन गुण इतने प्रबल है कि हम उसके प्रभाव में आकर के सब कुछ कार्य करते हैं, सारे कार्य हमारे उसके प्रभाव में आते हैं. इसलिए यहाँ पर कहा गया कि प्रकृति जो है वो वास्तव में करता है तीन गुण, ये ऐसा कहा गया है. तो अभी 15 टेक्स्ट नंबर 15 से हम पढ़ते हैं आगे.
न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देशदारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है.
यस, न दत्ते कस्यचित पापम, मैं किसी का पाप ग्रहण नहीं करता. दत्ते कस्यचित पापम. नेक्स्ट लाइन क्या है? हाँ, ना मैं किसी के पुण्य का भी करता. नॉट डज द सुप्रीम लॉर्ड एज्यूम्स एनीवन सिनफुल और पायस, किंतु अज्ञानता में मोहित लोग ट्रांसलेशन फिर से पढ़िए.
परमेश्वर कोईना पाप के पुण्य ग्रहण करता नहीं, परंतु देहधारी जीवो अज्ञान ना कारण मोहग्रस्त थाय छे, जे तेमना वास्तविक ज्ञान ने ढाकी दे छे.
अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होता है. यहाँ पर भगवान को भी बताया जा रहा है कि वो भी वास्तव में करता नहीं है. एक सेकंड, दरवाजा थोड़ा सा बंद है, दरवाजा थोड़ा बंद कर दो. तो भगवान यहाँ आगे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान में अपने आप को स्थिर करता है तब वो समझ पाता है कि भगवान भी इसके दोषी नहीं है. भगवान किसी के पाप पुण्य लेते नहीं. जैसे आगे पहले एक बार भगवान ने बताया था कि ऐसा संसार में कोई चीज ऐसी है नहीं कि जिसको प्राप्त मैं करना चाहूं और कर ना सकूं, और मुझे किसी कर्म की इच्छा नहीं है. दूसरी बात फिर भगवान यहां बताया वो कोई पाप करता है पुण्य करता है इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो तो वो खुद करता है तो मैं उसके बीच में क्यों पड़ू. भगवान ने साफ रूप से बता दिया. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बताते हैं कि अल्टीमेटली परमेश्वर सबके करता है, कंट्रोलर, नियामक है, लेकिन हमारे कर्मों के लिए वो नियामक नहीं है. एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि सरकार जो है वो प्रिजन हाउस भी बनाती है, साबरमती में जेल भी बनाया और आपका पार्क भी बनाया, परिमल गार्डन, लॉ गार्डन इत्यादि पार्क भी बनाया. तो अभी पार्क बनाना और प्रिजन हाउस बनाना दोनों गवर्नमेंट ने ऑफर कर दिया सरकार ने. अभी आप पार्क में जाना चाहते हो या प्रिजन हाउस में जाना चाहते हो ये सरकार थोड़ी बताएगी, और आपकी अपनी इच्छा है. इस तरह से भगवान नियम बनाए, सृष्टि बनाई, लेकिन ये सृष्टि में जीवात्मा जो भ्रमण कर रहे हैं उनको अपनी स्वतंत्रता दी गई है, वो इसमें डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते, है ना. जब भगवान जीव की स्वतंत्रता छूते नहीं है, पूरा भगवद गीता बताने के बाद भी भगवान ने अर्जुन को कहा था यथेच्छसि तथा करो, फिर तुम्हें जो ठीक लगे करो, मैं तो बता दिया गीता। ऐसा नहीं कि अर्जुन तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा भगवान ऐसा नहीं कहे, जो तुम ठीक लगता है करो। यही वास्तविक भगवान का यही स्वभाव है। भक्त लोग, गुरुजन, ये लोग आपको बताएंगे कि सच क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भगवान भक्त बताएंगे आपको, लेकिन चुनाव आपको करना है, करना क्या है वो आपको ढूंढना है। कल मैं एक एग्जांपल दे रहा था डिवोटीज को कि किचन तो वही होता है, अगर समझ लो आपके पास भी किचन है और एक दूसरे व्यक्ति के पास भी किचन है, उसके पास भी आटा है, गेहूं है, शक्कर है, चीनी है, ये घी है, सब है, और आपके पास भी सब कुछ है, लेकिन वो व्यक्ति उसके पास जो चीज है, स्टोव है, सिलेंडर है, सब कुछ है, लेकिन उस वो व्यक्ति जला हुआ सूखा रोटी बना पाता है और दूसरा व्यक्ति हलवा बना पाता है। वस्तु तो सब सेम ही है, किचन सेम है, सारे सामान सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसको उपयोग करना नहीं आता। इस तरह से वो आपके चुनाव में है कि आप चाहो तो प्रिजन हाउस जा सकते हो, आप चाहो तो पार्क में जा सकते हो, लेकिन हमें चुनाव करना नहीं आता कि हम कहां जाए। भगवान का कृपा, गुरु का कृपा भी ऐसा है, सबके ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास घी नहीं था या आपके पास शक्कर नहीं था या आपके पास कुछ ये चीज की कमी, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास सारी सुविधा होती है, प्रभुपाद के ग्रंथ सबके पास हो सकते हैं, गुरु सबके पास हो सकते हैं और वैष्णव का एसोसिएशन सबके पास हो सकता है, सोलह माला जब सब कर सकते हैं, लेकिन कौन फायदा उठाता है इन सब चीजों का और कौन फायदा नहीं उठाता इन सब चीजों का, ये हम पर निर्भर करता है। अगर कोई भक्त प्रभुपाद के ग्रंथों का, वरिष्ठ भक्तों का, गुरुजनों का, इन लोग का संग प्राप्त करके 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो जितनी प्रगति कर सकता है आध्यात्मिक जीवन में, और कुछ लोग 20 साल तक उसका उपयोग ही नहीं करते, अवेलेबल होने के बाद भी उसका उपयोग ही नहीं करते। जब उपयोग नहीं करेंगे तो क्या परिणाम आएगा, ये तो पता नहीं, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है प्रभु जी, 20 साल हो गया, वैसे पढ़ा हूं अभी भी, ये तो आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, इस पर गुरु जी का ज्यादा कृपा लगता है, इस पर चैतन्य महाप्रभु की ज्यादा कृपा है। अरे क्या कृपा, सबके लिए सेम थी, आपने उपयोग किया नहीं और उसने उपयोग किया, इसलिए उसका आगे बढ़ गया। ये भाव तैयार रख रहे, तो ये स्वतंत्रता भगवान सबको देते हैं, लेकिन इसमें बीच में कहीं आते नहीं भगवान। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, द सुप्रीम लॉर्ड डज नॉट क्रिएट अ पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर एनी लिविंग एंटिटी, बट द लिविंग एंटिटी बिविल्डर्ड बाय इग्नोरेंस डिजायर्स टू बी पुट इनटू सर्टेन कंडीशन ऑफ लाइफ एंड थेरबाय हिज चेन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बिगिंस। भगवान नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन जीवात्मा ऐसा करने लगा तो भी भगवान क्या करे। A living entity is by superior nature full of knowledge, nevertheless is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. जीवात्मा को अपने कर्मों का जिम्मेदारी लेना पड़ता है। एक एग्जाम्पल ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि अगर फिर भगवान किस तरह से करता हुए जब हम चुनाव करते हैं और फिर बीच में प्रकृति भी आ गई, तो भगवान किस तरह से करता हुए, तो इसका आंसर बड़ा आसान है कि जैसे कोई समझ लो कि कोई छोटा बच्चा है, वो देखता है कि उसके पिताजी ने 10 किलो का एक बैग उठा लिया और बच्चा सोचता है कि 10 किलो का बैग मैं भी उठा सकता हूँ, मैं भी उठा लूंगा, उसमें क्या है, तो क्या करेगा, प्रयास करेगा। पहले तो उसने इच्छा की इतना बड़ा भारी वजन उठाने की और प्रयास भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। फिर पिताजी ने कहा कि बेटा तू नहीं कर पाएगा, छोड़ ले बेटा, बोले नहीं मुझे तो उठाना है, मुझे तो उठाना है, तो फिर पिता क्या करते हैं, ठीक है तुम उठाओ, वो उठाते और नीचे से
पुश करते,
उसको पुश करते सब, उसको लगता है कि मैंने किया, लेकिन एक्चुअली तो भगवान उठाते, उसने उठाया नहीं है, लेकिन उस देखने में ऐसा है कि उसने उठाया, लेकिन इसके सबसे पहले रीजन ये था कि उसने इच्छा प्रस्तुत की थी, इसलिए पिता ने सपोर्ट किया। वो इच्छा हमारी थी, इच्छा भी हमारी थी और प्रयास भी हमारा था, भगवान ने तो केवल हाथ खड़ा करके उसको सैंक्शन कर दिया कि ठीक है तुम करो, ये हो नहीं सकता था, हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये बच्चा, अगर हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, वो बच्चा अहंकार वश कह रहा था कि नहीं ये मैं उठा सकूंगा, मैं उठाता हूं, तो इस तरह से आत्मा भी इस तरह से सोचता है कि ये मैंने किया, ये मैं करता हूं, लेकिन भगवान इसके बीच में नहीं पड़ते। सो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, द लॉर्ड इज विभु, somebody can read, भगवान विभु है,
भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अनु है, जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की ही की जाती है, अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते, अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चीर संगी रहते हैं, फलत वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है, भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, अपना सोची हुत नहीं प्रभु सोची तत्काल, अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे, अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं।
ठीक है, सो भगवान बिल्कुल एक कल्पवृक्ष जैसे है, अगर कोई भी व्यक्ति जो भी वहां पर जाके मांगता है उसको भगवान दे देते हैं। हालांकि भगवान का कार्य ये नहीं है कि सबकी इच्छा पूरी करना, लेकिन वो परम पिता होने के कारण आपकी स्वतंत्रता में वो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते। इसलिए कृष्णा हालांकि वो तो परमेश्वर है, लेकिन ये कार्य परमात्मा करता है, सबको सैंक्शन करना। तुम बोलता हो, पहले बोलेगा मैं इसकी हत्या करना चाहता हूं, तो ऐसे हत्या शास्त्र बोलते हैं कि हत्या नहीं करनी चाहिए, तो भगवान भी एक बार परमात्मा के रूप में उसको प्रयास करेंगे कि तुम ये कार्य मत करो, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं मेरा हट पे अड़ा हूं। लेकिन परमात्मा जब तक उसको यस नहीं बोलते तब तक वो कर नहीं सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोलर वो है। जब वो भगवान अगर अपनी स्वतंत्रता को अगर रोक ले तो फिर वो सिद्धांत के विरुद्ध जाएगा। कैसे? भगवान भगवद गीता में बोल दिए कि जीव मेरा अंश है, तो जितना मुझ में है उतना उसमें है, मैं सच्चिदानंद हूं वो भी सच्चिदानंद है, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं वो सूक्ष्म स्वतंत्र है। अगर भगवान वो स्वतंत्रता जो है, एक छोटी सी स्वतंत्रता, उसको भी वापिस ले लेते हैं तो फिर तो प्रेम भी बचेगा नहीं, है ना? प्रेम कैसे हो सकता है? जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आप किसी को बलपूर्वक प्रेम करवा सकते हो अपने आप को, ये पॉसिबल है? ये नहीं है कि आप किसी को बोल सकते नहीं तुम्हें मुझसे प्रेम करना ही पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता। तो अगर भगवान भी अगर ये करना शुरू कर दे कि तुम बलपूर्वक मेरा भक्ति करो, मेरे शरण में जाओ, तो उसमें प्रेम नहीं रहता फिर, इसलिए भगवान ही स्वतंत्रता को कभी भी स्पष्ट नहीं करते, ठीक है यू डू इट। लेकिन भक्त के मित्र भी है भगवान, जैसा एक बार प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने कि कृष्ण के भक्त हमेशा गरीब रहते हैं और शिव जी के भक्त धनवान होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो कृष्णा उनके लक्ष्मी से निरंतर उनकी सेवा करती है और उनके भक्त गरीब, और शिव जी जंगल में रहने वाला स्मशान में रहता है, कपड़े भी पहनता नहीं और उसके भक्त सब अमीर, तो ऐसा क्यों? तो भगवान के उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान जीवात्माओं को ऐसा मूर्ख वरदान देने के लिए तैयार नहीं रहते कि जैसे तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति हो। ये कृष्ण का व्यवहार है, परमात्मा का व्यवहार नहीं है। कृष्ण ऐसा करते हैं भक्तों के साथ, परमात्मा ऐसा नहीं करते। परमात्मा को सब सारी सैंक्शन देते रहते हैं, ठीक है यू डू इट। हाँ क्या चाहिए आपको? मुझे पाप करना है, ग्रांटेड जाओ। क्या चाहिए आपको? मुझे पुण्य करना है, ठीक है जाओ। क्या चाहिए आपको? मुझे भगवान की सेवा शरण में जाना है, सेवा में जाना है, ठीक है जाओ। ये भगवान का काम है, परमात्मा का काम है आपकी। हाँ लेकिन अगर आप ये कहते हो कि नहीं मुझे भगवान की शरण में जाना है, तो बोले डिपार्टमेंट कृष्ण के पास है, कृष्ण के पास जाओ, तो भगवान के पास, तीन है ना, ब्रह्मा परमात्मा और भगवान, तो फिर वो सीधा जाता है भगवान के पास, फिर भगवान उसे डील करते हैं, डायरेक्ट डीलिंग, और परमात्मा अंदर से हेल्प करते हैं। परमात्मा जो कहते हैं वही चीज आपको आपके आध्यात्मिक गुरु बाहर से कहते हैं, दोनों का आपस में संबंध है, दोनों एक दूसरे के आविर्भाव माने जाते हैं, परमात्मा अंदर से और गुरु बाहर से आपको सिखाते हैं। सो ये ज्ञान होना आवश्यक है कि हमारी चॉइस और या हमारी इच्छा के आधार पर सारे क्रिया होती है और उसके सैंक्शन करने वाले भगवान है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान इस चीज को बताते हैं, इसको समझने का परिणाम क्या आता है।
किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती
हैं। हाँ पर तो तीन कर्ता क्लियर हो गए। ये ज्ञान वास्तव में तीन कर्ता अलग अलग है, एक तो जीवात्मा जो करता है, लेकिन उसको जब ज्ञान होता है कि मैं तो शरीर नहीं मैं तो आत्मा हूं, लेकिन ये प्रकृति जो है मेरी सारी जो मेरे सारे कर्म है वो तीन प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा संचालित होते हैं, तो इसलिए सेकंड दूसरा कर्ता बन गया प्रकृति। लेकिन बाद में उसको वो आगे बढ़ता है तो उसको पता पड़ता है कि प्रकृति को परमिशन देने वाले तो भगवान है, तो इसलिए तीसरा कर्ता हुआ भगवान। तो मूल कर्ता है जीव, मूल कर्ता, क्योंकि उसने इच्छा की थी, बाकी का काम उसके बाद हुआ। तो ये तीन प्रकार के कर्ता होते हैं। लेकिन जब कोई डायरेक्ट भगवान की शरण में आता है या फिर भगवान की बात सुनता है, प्रभुपाद एक तात्पर्य में बताए थे जगह पर कि डिजायर कम्स फ्रॉम अस बट द सैंक्शन कम फ्रॉम गॉड। If you want to do business, you must have sanction or license from the government. Proper example लेते हैं कि आपको धंधा करना है तो आपको license लेना पड़ता है ना government के पास जाकर के। Like that. You cannot do it your own will. Similarly, you desire and God will say, okay, sanction करते हैं भगवान। So that's the idea. लेकिन भगवान ऐसा भी कहा तो दरबार पड़ी थी जा मेरे शरण में आ जाओ, लेकिन वो ऑफर को भगवान हमने ठुकरा दिया। हम एडवाइस की परवाह नहीं करते तो ये हाल होता है फिर। ओके फर्दर।
जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त क्लमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है।
तो जीव जब ज्ञान प्राप्त करे तो समझ सकता है इस बात को कि हर एक व्यक्ति इच्छा करता है, उसके आधार पर प्रकृति उसको रॉ मटेरियल देती है उसको फुलफिल करने के लिए, कि अपने इच्छा क्या तो कुछ सामान भी तो चाहिए ना आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, और उसका डायरेक्शन चाहिए, उसकी बुद्धि चाहिए इत्यादि, उसका प्रभाव। तो प्रकृति आपको ये सब प्रोवाइड करती है और सैंक्शन भगवान करते हैं, और फिर कर्म चक्र शुरू होता है, फिर वो जो कर्म करेगा उसका परिणाम ये आएगा, ये चक्र चलता रहेगा, परिणाम निकलता रहेगा, और फिर वो इसमें फंसता रहता है, उसको अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं इसके आधार पर। और जब व्यक्ति इन सभी चीजों से अवगत हो जाता है, जब ये जान लेता है कि ये कार्य इस तरह से होता है, तो ये सब अज्ञानता उसकी चली जाती है, तब वो भगवान में स्थिर हो जाता है और सब प्रकार की जो अशुद्धता है उससे वो पवित्र हो जाता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब वो स्थिर होता है आत्मज्ञान में या भगवान के ज्ञान में।
विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं।
तब फिर वो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और फिर वो सबको प्रॉपरली देख सकता है, प्रॉपर विजन से देख सकता है। ये की मेमोरी श्लोक होगा शायद, ब्राह्मणी कवि अश्विनी सुनिचास पंडित क्या है, विद्या विनय संपन्न है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि अश्विनी पंडिता समदर्शिना, ये है उस व्यक्ति का विजन जिसके पास ये तीनों कर्ताओं का नॉलेज आ जाता है। फिर उसके लिए वो सबको सबके हृदय में परमात्मा को देखता है। क्या क्या है यहाँ पर? हम्बल से विनय विद्या विनय संपन्न, जिसके पास विद्या ज्ञान प्राप्त हुई है वो समदर्शन होता है, उसके लिए ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता और कुत्ते को खाने वाला एग्जाम्पल के रूप में भगवान दे रहे हैं। इसका अर्थ नहीं कि इतना लिमिटेड है, एग्जाम्पल दे रहे हैं। हाँ सर, एक्सट्रीम है अपने अपनी जगह पर। तो भगवान इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसा लिया कि ऐसा बुद्धिशाली ब्राह्मण भक्त होता है, वो ब्राह्मण के अंदर देखता है परमात्मा, कुत्ते के अंदर भी परमात्मा देखता है, हाथी में भी देखता है और चंडाल के हृदय में भी परमात्मा को देखता है। इसलिए वो ऐसा नहीं सोचता कि ये बंगाली है, ये मारवाड़ी है, ये यू नो पटेल है, गुजराती है, काठियावाड़ी है, ऐसा सब नहीं सोचता वो, क्योंकि उसकी दृष्टि विद्या विनय संपन्न है। उसकी दृष्टि जो है उसमें वो क्लियर है कि वो परमात्मा को देखता है और अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों ने अपनी अपनी चॉइस बनाई थी। जैसे मैं अभी दो चार दिन पहले, कई बार ठंडी के कारण रात को कुत्ते रोते रहते हैं ना, होता है कई बार आसपास में आवाज करते हैं, भौंकते रहते हैं कभी कभी रात को, आधी रात को अगर आपकी आंख खुलती है तो सुनाई देता है कि आवाज आ रही है कहीं से, राइट? सो मैं सोच रहा था जस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट, नींद में से आंख खुल गई थी कहीं, तो मैं सोचा बहुत ठंडा लग रहा होगा बेचारे को इसलिए चिल्ला रहा होगा, फिर बाद में सोचा भाई तुमने चुना क्यों ऐसा बॉडी, तुमने इच्छा किया था तब जाके तुम्हें कुत्ता बनना पड़ा ना, तो तुम्हें कुत्ता बनने को किसने बोला था? अब कुत्ता बने हो तो भोगो इसका परिणाम। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से, वो हो सकता है वो कुत्ता किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होगा पूर्व जन्म में, लेकिन आज सड़क पे ऐसे रो रहा है, तो ये हमारी अपनी इच्छा से हमने ये प्रस्तुत किया कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं आगे जाके। तो भक्त होता है वो सबको समान दर्शन से देखता है, समदर्शिना पंडिता समदर्शिना। जो पंडित अर्थात पंडित के विषय में ऐसा भी कहा गया, चाणक्य पंडित कहते हैं, कौन सा वो फेमस लोग है, मातृवत्पर दारेशु
मातृवत्पर आत्म सर्वभूतेषु या पश्यति सा।
हाँ, इसका अर्थ बताइए।
जो आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्म मतलब अपने तरह समस्त सर्व ने समस्त भूतेषु मैंने प्राणियों में, पर द्रव्येषु लोष्टवत् दूसरों की संपत्ति को मिट्टी के ढेल के समान ढेल के
मातृवत
मातृवत सर्वधारेषु
परधारेषु
जो दूसरी जितनी स्त्रियां हैं
अपनी पत्नी को छोड़कर
वो सब माता के समान मातृवत।
yes.
का मतलब उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह की धारा।
yes.
जो ये इस तरह से देखता है वही वास्तव में ज्ञानी
है। ढूंढकर दोनों जरूर ठंडा हुआ है।
वही वास्तव में ज्ञानी है पंडित।
यस, सो ये है पंडित का एक डेफिनेशन, वन मोर डेफिनेशन।
अंदर ठीक है,
ठीक है, ठीक है। अंदर पीछे का दरवाजा, बट दैट्स फाइन। पूछो माता जी को। सो मातृत्पर दावेशु, दूसरों की पत्नी को माता का समान गिनना, फिर लोष्टवत् द्रव्येषु पर द्रव्येषु, दूसरे के धन को मिट्टी गिनना, और आत्मा सर्वतेषु सबको आत्मा के रूप में देखना, खुद भी आत्मा है। ठीक है, फाइन, छोड़ दो, आगे वाला दरवाजा बंद कर देना बाद में, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो ये सोचने, ये देखने वाला व्यक्ति पंडित माना जाता है।
और मिट्टी का भी जो ऐसा मिट्टी जो कुछ काम का नहीं।
हाँ, लोष्टवत्
लोष्ट मतलब मिट्टी का, बेकार का, बिल्कुल जिसमें कुछ हो ही नहीं सकता।
हाँ, जिसका कुछ नहीं हो सकता,
रेत होता वही मिट्टी के काम आती है, वो काम नहीं आता।
यस, सो और दूसरा भी समदर्शिना के विषय में ऐसा कहा गया है कि हमारे कुछ आचार्य बहुत अच्छा बताते हैं समदर्शन। सम का अर्थ होता है साथ में, बोलते ना, साथ में आने के लिए सपरिवार आओ, बोलते ना सकुटुम्ब, या फिर सविशेष स्पेशल। स का अर्थ होता है साथ में, स और म का अर्थ होता है माँ माता, जो और जो सुप्रीम माता है वो है श्रीमती राधा रानी, जो निरंतर अपने साथ श्रीमती राधा रानी को रखने वाला है। कौन है वो? कृष्ण। तो समदर्शिना का अर्थ होता है जो व्यक्ति निरंतर प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन है ना, जो निरंतर सब जगह कृष्ण का हाथ दिखता है, सबको भगवान के साथ जुड़ा हुआ दिखता है, अज्ञानी व्यक्ति को भी, चंडाल को भी, हाथी को भी, सबको कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ दिखता है। हालांकि उसका अर्थ ये नहीं होता है एक कि आप हाथ शेर के पास जाकर उसको गले लग जाओ, इसका अर्थ ये नहीं है, यथा योग्य व्यवहार करता है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि वो कनेक्शन देखता है, सब जगह भगवान का हाथ देखता है, समदर्शिना समदर्शिना, सब जगह कृष्ण का दर्शन उसको प्राप्त हो सकता है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरत निज इष्ट देव मूर्ति। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, अर्थात वो कुछ भी देखता है उसको सब जगह कृष्ण ही दिखाई देता है। आपको तो बहुत बड़ी अवस्था है प्रभु जी कृष्ण भक्ति में। लेकिन अगर आप निरंतर इस बात को सुनते रहेंगे कि कृष्ण ही अंतिम कंट्रोलर है, कृष्ण को सैंक्शन होगा तभी जाके कुछ होगा आगे, तो सब जगह कृष्ण बार बार सुनते रहेंगे तो आपको हर एक चीज में कृष्ण दिखाई देंगे। हर एक कार्य में, हर एक परिस्थितियों में, सब जगह आपको कृष्ण का हाथ दिखा देता है। और फिर इस तरह से निरंतर कृष्ण का दर्शन करता रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं। सो
इसके ऊपर
हाँ बोलिए।
एक है हमारे रिलेटिव, मतलब वो नहीं मानते
हैं,
भगवान हाँ। तो मानते हैं, बट इसको में मतलब वो बोलते हैं, इसलिए आपने बोला कि बार बार सुनने से हम विश्वास करने लगते हैं हाँ। तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप बार बार सुनोगे तो आप ऐसा ही करोगे, उनका ही सच मानोगे भले वो झूठ हो।
इतने सालों में जितना आउटसाइड लोग आपने सुना बैठे है, इसलिए आपको सत्य भी झूठ लगता है, ऐसा आप कह सकते हो। आपने हजार बार बचपन से सुनते सुनते अभी आप हमारे सत्य को भी झूठ बोलने लगे, है ना। अगर कोई व्यक्ति सूर्य जो है वो कहता है कि नहीं सूर्य नहीं है, सूर्य नहीं है आकाश में, सूर्य नहीं है, है ना? तो कोई उसको पागल गिनेगा, जैसे उस व्यक्ति को हम कह रहे हैं। कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं सूर्य को नहीं मानता, है ना, तुम लोग तो दस दुनिया भर के लोग आपको बोलते रहे कि आकाश में सूर्य होता है, इसलिए तुम उसको मानने लगे, लेकिन मैं नहीं मानता सूर्य को, तो कौन मूर्ख है?
उसको तो प्रभु जी ले जाके धूप में खड़ा कर दो
हाँ
मानने लगेगा।
इवन तुकाराम महाराज के बारे में भी बोले कुछ किसने देखा विमान आया था, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, उनकी हत्या कर दी गई थी, बोले इतना ऐसा बोल रहे थे।
अच्छा, तुकाराम जी से, तुकाराम
क्योंकि वो महाराष्ट्र नहीं है तो मतलब
हाँ जो जिसको मानना ही नहीं है,
भगवान आए थे लेने,
जिसको मानना ही नहीं उसका क्या।
नहीं, जो तुकाराम महाराज के बारे में ऐसा कहता हूँ ना, उससे कुछ मैं कहना ही अच्छा है।
हाँ भाई, फिर मैंने उसको मतलब कहना ही बंद कर दिया उससे, हाँ। बातें छोड़
दी। इस प्रकार के लोग तो फिर अपराध करते रहते हैं, इसलिए इनको तो
मैंने मतलब एक बार फिर ऐसा चैतन्य महाप्रभु की सिस्टर भी हमारे श्रद्धालु व्यक्ति को कहना मेरे नीचे, फिर उसको मैंने छोड़ दिया, उसे मतलब ज्यादा बातें नहीं करती मैं, रिलेटिव ही है
हमारे।
दो प्रकार के हार्मफुल लोग होते हैं, एक तो सर्प चाणक्य का पंडित कहते हैं, और एक जो मनुष्य के रूप में सर्प होता है। तो उस दोनों को सर्प, तो सर्प का तो क्या है कि उसको मदारी वश में ला लेगा, जो सांप को वश में ला सकते हो मंत्र बोल करके, बीन बजा कर गया कुछ करके। लेकिन जो खालू मनुष्य रूप में जो सर्प होता है, उसका तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति का अहंकारी व्यक्ति को समझाना असंभव है, उसको प्रसाद खिला सकते हो बस।
बुलाते रथ यात्रा में आओ, ऐसा करो ऐसा करो,
नहीं
आते
हैं वो लोग। ऐसा करना पड़ता
है, वही रहता कि कम से कम उनको प्रसाद तो खिलाए।
सो ये श्लोक के आधार पर हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो ऐसा करो, आप माता जी के साथ रहो तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा, और बाकी आप दो का ग्रुप, आप दो पीछे दो, और दिग्विजय प्रभु आप इस साइड आ जाइए। एक तीन ग्रुप बनाते हैं, छोटा सा एक्सरसाइज देते हैं, और इसके आधार पर, इसी श्लोक के आधार पर हम बात करेंगे। हम आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करके देते हैं, और इसका आपको बताना है उत्तर। एक सिचुएशन क्रिएट करके देते हैं कि समझ लो कि आप भारत में महाराष्ट्र के किसी जंगल से गुजर रहे थे, और आपके साथ में एक ज्ञानी है जो आत्मा और शरीर के अंतर को मानता है और कर्म को त्यागने वाला है और ब्रह्मवादी है, एक योगी है कि जो अष्टांग योग की पद्धति को करता है, ध्यान लगा के बैठ सकता है इत्यादि, वो दोनों एक 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 ज्ञान एक योगी आपके साथ है और आप टोटल तीन लोग हुए, एक आप, एक ज्ञानी, एक योगी, ऐसे तीन लोग। और आप ऐसे घने जंगल में से गुजर रहे थे और अचानक आपके सामने एक शेर आ गया। तो जैसे ज्ञानी जो शेर था वो ज्ञानी के पास गया तो ज्ञानी ने उसको ब्रह्म के रूप में देखा कि ये तो ब्रह्म है। फिर जो शेर था वो खा गया, ज्ञानी को खा गया। फिर वो जो शेर था वो योगी के पास गया, वो उस योगी ने उस शेर के भीतर छिपे हुए परमात्मा के ऊपर ध्यान करना शुरू कर दिया। मैं उसने ऐसा देखा कि ये इसमें भी तो परमात्मा है। तो वो जो शेर था वो योगी को भी खा गया और आप बचे इस्कॉन वाले भक्त, कृष्ण भक्त। और उस समय आप क्या करेंगे? आप तो आप आपस में चर्चा कीजिए कि इस विषय में आप इस परिस्थिति का इवेल्युएट किस तरह से करते हो। साथ साथ में दूसरे एक दो चीज है वो साथ में बोल देते हैं ग्रुप एक्सरसाइज में। लोगों की जाति को जातियां अलग अलग होने के उपरांत हम व्यावहारिक रूप से सबको समान भाव से कैसे उनके साथ बर्ताव करें। प्रैक्टिकल मेथड टू ट्रीट एवरीवन इक्वली डिस्पाइट देयर कास्ट। और दूसरा एक्टिविटी भी हम आपको दे रहे, थियोलॉजिकल एप्लीकेशन, जिसमें एक राजनीतिक व्यक्ति ने जो शूद्र की नीची जाति थी, शूद्र से नीची जाति, उसको हरिजन का नाम दे दिया। जिस उनका उद्देश्य ये था कि ऊंची जाति नीची जाति का समस्या हटाने के लिए उन्होंने ये एक सूत्र निकाल दिया कि नीची जाति वाले भी हरिजन है, भगवान के लोग हैं, तो इस तरह से सारी समस्या समाधान हो जाए। इस विचार से उन्होंने ये कार्य किया। तो कृष्ण भावनामृत दृष्टिकोण इसके विषय में क्या कहता है? और उसके बाद फिर हम थोड़ा छोटा सा ड्रामा करेंगे। तो आप एक बार इसको, आपको 5 मिनट हम देते हैं, इसके ऊपर आप आपस में डिस्कस कीजिए और जो परिणाम ला सकते हो।
को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं।
हाँ, तो इस तरह से अपने आप को जो लोग परमात्मा ये पीछे जो श्लोक गया उसके आधार पर उनके लिए वो लोग समान भाव से व्यवहार कर सकते हैं, समानता रख सकते हैं और जन्म मृत्यु की व्यवस्था है उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की है। सो ये लोग ब्रह्म में स्थिर हो सकते हैं और ब्रह्म को केंद्रित कर सकते हैं, अपने आप को ब्रह्म में केंद्रित कर सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर अलग अलग रूप से देखा जा सकता है। ब्रह्म का अर्थ वो कि जो आप ब्रह्मवादी परमात्मा निराकार ब्रह्म को मानता है वो ब्रह्मवादी है, तो वो व्यक्ति क्या सोच सकता है, हर एक सिचुएशन को क्या सोचेगा वो, कि सब कुछ ब्रह्म में स्थिर होने के कारण किसी चीज के लिए शोक करना या प्रसन्न होना या सब समान रूप से देखता है वो। परमात्मावादी जो होता है उसके लिए भी ये हो सकता है, वो हर एक वस्तु को क्या देखेगा कि सभी जीवात्माओं को अल्टीमेटली सैंक्शन तो परमात्मा करते हैं। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रीवास ठाकुर को किसी ने आकर संदेश दिया श्रीवास ठाकुर को कि मुस्लिम सैन्य आ रहा है, तुम संकीर्तन बहुत करते हो तो तुम्हारा मृदंग मृदंग तोड़ने के लिए आएंगे जो हरे कृष्ण कीर्तन करने वाले लोग हैं, उन सबको पकड़ लेंगे, पुलिस पिटाई करेंगे, ऐसा करेंगे, उसको सजा मिलेगी। तो सब अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए घर के। तो चैतन्य वहां पर प्रकट हुए, खोलो दरवाजा। चैतन्य श्रीवास ने श्रीवास ठाकुर ने दरवाजा खोला, महाप्रभु अंदर जाके बोले दरवाजा बंद क्यों कर दिया था। तो बोले ये बात सूचना मिली थी कि ये चांद काजी का जो आदमी लोग आएगा और मुझे पकड़ हम सबको पकड़ेगा, मारेगा, पीटेगा और अरेस्ट करेगा, ऐसा सब समाचार मिला था। तो भगवान ने उसको बोला निमाई पंडित ने कि जब तक मैं उसको सैंक्शन करूंगा तब करेगा ना ये। मैं तो परमात्मा हूँ, उसके हृदय में बैठा हूँ, जब तक मैं यस उसको यस नहीं करूंगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा। फिर जब महाप्रभु ने सब उसकी बात सुनी फिर तो महाप्रभु ने उसको कहा ये देखो श्रीवास ठाकुर, तुम देखोगे कि ये काजी जो बहुत हल्ला कर रहा है ना आजकल कि नहीं करने दूंगा कीर्तन, ये सब बोल रहा है ना, मैं उसको बताऊंगा कि तुम अपना कुरान लेकर के बैठो और मैं तुम्हारे सामने बैठता हूं और इस पत्थर को पिघला कर दिखाओ तुम्हारे कुरान से। तुम्हारे एक 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 पशु को कृष्ण प्रेम से रोमांचित करके दिखाओ, मिस प्रेम से रोमांचित करके दिखाओ, तब मैं तुम्हारे धर्म को मानूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा और महाप्रभु ने कहा कि मैं उसको अपने हरि नाम के माध्यम से पत्थर को पिघला के दिखा सकता हूँ। महाप्रभु से पंडित तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक भगवान हृदय में है, कई बार भक्त लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि कोई मेरे साथ कोई अच्छा बुरा किसने किया तो हम लोग क्या सोचते हैं, जब वैष्णव को क्या सोचना चाहिए कि परमात्मा उसके हृदय में है, जब परमात्मा ने सैंक्शन किया तभी आदमी मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सका, अर्थात मुझे भगवान के शरणागत होने की आवश्यकता है। ये व्यक्ति इस तरह से हर एक वस्तु को देखता है, इस तरह से सोचता है वो। तो जब तक परमात्मा सैंक्शन नहीं करते तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। और भगवान के भक्त क्या सोचते हैं कि कृष्ण ने ऑर्गेनाइज करके दिया है, हम खास करके हम लोग जो संस्था से जुड़े हुए ये माला का जप कर रहे हैं, भगवान का शरणागत है, हमारे लिए तो कृष्ण किस तरह से व्यवहार करते हैं हर क्षण में। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत प्रयास करते हो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, होता नहीं, तो आप समझ सकते हो कि शायद कृष्ण का इच्छा नहीं है, इस विषय में सपोर्ट नहीं हो रहा है, भगवान नहीं चाहते ऐसा हो। या फिर किसी के मुख से भगवान बुलवा देते हैं, गुरु के मुख से बुलवा देते, वैष्णव से बुलवा देते कि तुम इस प्रकार का कार्य करो, इस पर तुम्हारा हित है। तो भगवान हर क्षण पर जितना तुमने जैसे समझ लो कि बाहर सूर्य का प्रकाश है तो आपने दरवाजा बंद रखा है तो सूर्य का प्रकाश भीतर नहीं आएगा, लेकिन जितनी मात्रा में आपने अपना दरवाजा खोला है उतनी मात्रा में सूर्य प्रकाश आपके अंदर घर में आएगा। उस प्रकार से जितनी मात्रा में आपने अपने आप को समर्पित किया है भगवान को उतनी मात्रा में कृष्ण आपके साथ रिसिप्रोकेट करेंगे। वो हर 5 मिनट में, 1 मिनट में, हर सेकंड पर आपको रिसिप्रोकेट कर सकते हैं, लेकिन हमने हमारे द्वार खुले रखे हैं तो। और ये द्वार बंद कैसे होते हैं? अज्ञानता से। ये द्वार बंद कैसे होते हैं? भौतिक इच्छाओं से। ये द्वार बंद कैसे होते हैं? माया से। जब तक ये द्वार खुले रहेंगे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर डायरेक्ट कृष्ण डील करते फिर। तो भक्त ये सोचता है तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण, जो कुछ भी वो श्लोक मैंने आपको बताया था पहले, एक बार फिर से बताता हूँ, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, यह दसवें स्कंद का 14वां अध्याय 8 नंबर श्लोक है, जिसमें कहा गया है तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो कोई जो कुछ भी मेरे जीवन में प्राप्त हो रहा है वो भगवान की अनुकंपा है, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, और ये जितना भी परिणाम भुगत रहा हूं मैं मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, सब कुछ जो भुगत रहा हूं मैं, इसमें कोई दोषी नहीं है, सारा ब्लेम किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है सारा ब्लेम, किसी का कोई हाथ नहीं है इसके पीछे, लेकिन कृष्ण कृपालु है इसलिए मुझ पर अनुकंपा करके उसको कम करके दे रहे हैं। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवात्म कृतम विपाकम ऋग्वाग वपुभिर विदधन नमस्ते, इसलिए मैं अपने आप को मन वचन कर्म से सब रूप से कृष्ण की सेवा में अपने आप को समर्पित करता हूँ, एक दिन तो भगवान मुझ पर कृपा करेंगे ना, इस आशा से मैं अपने जीवन को जीता हूँ, इस आशा से शरीर में प्राण को बनाए रखा है और उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो ये भाव जो है ये है वैष्णव का भाव, और उसके ऊपर फिर भक्ति तुरंत प्राप्त हो जाती है उसको। तो भगवान वादी जो है या अर्थात जो भक्त है वो अपनी भक्ति को बढ़ाता है हर स्थिति में। ओके, सो नेक्स्ट श्लोक में उसी व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आगे चर्चा की पड़ी।
जे मनुष्य मन गमती वस्तु ने वस्तु पामी ने हर्ष पामतो नथी अने अणगमती वस्तु मेळवी ने उद्विग्न थतो नथी, जे स्थिर बुद्धि छे जे मोह रहित छे अने जे भगवत विज्ञान नो जानकार छे ते प्रथम थी ज ब्रह्म मां अव्यवस्था होय छे।
यस, तो यहाँ पर ये जो लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण तो हालांकि किसी सिद्ध पुरुष जैसे है, लेकिन ये साधक के लिए बताए जाते हैं, साधक को इस चीज को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए इस प्रकार की गुणों को, क्योंकि वो अपने आप को शरीर के साथ अपना पहचान नहीं करता है, तो मोह रहित होकर के भगवान के दिव्य ज्ञान को जानता है। तो इसका प्रभुपाद जी का पर एक एग्जांपल भी दिया था, न प्रसृत प्रेम प्राप्य, प्रभुपाद बता रहे थे कि मायावादी लोग क्या सोचते हैं, वो लोग सब कुछ ब्रह्ममय देखते हैं, और भगवान का भक्त सोचता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से आधारित है। एंड प्रभुपाद सेड, अगर कोई ब्रह्म कंसेप्शन में है या कृष्ण भक्त है, अगर उसको अचानक लाखों डॉलर का लॉटरी लग गया है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो एक क्षण के लिए एकदम गरीब हो सकता है या अचानक क्या हुआ धनवान हो गया, एक गरीब था। तो प्रभुपाद ने एक कलकत्ता में ऐसा हुआ था, एक बार कोलकाता में एक सेठ था और उसका एक काम करता था, एक नौकर भी था वहां पर, तो सेठ लॉटरी लेने जा रहे थे, तो नौकर ने कहा स्वामी सेठ जी मेरा भी एक लॉटरी ले लो ना, मैं भी दे देता हूँ थोड़ा बहुत आपको, मेरा भी एक लॉटरी ले लो, मैं भी अपना भाग्य अजमा करके देखूं। तो हुआ ऐसा कि वो लॉटरी जो थी वो कुछ एक करोड़ की होगी उस समय, तो हुआ ऐसा कि परिणाम तो आ गया, मालिक को तो लॉटरी नहीं जीत पाया, नौकर लॉटरी जीत गया, लेकिन जब नौकर को बताया कि तुम्हें एक करोड़ का लॉटरी तुम जीत गए हो, तो नौकर को हार्ट अटैक आ गया वो मर गया। तो प्रभुपाद कहते हैं, ये प्रभुपाद ने बताया स्टोरी, डिवोटी डज नॉट बिकम टू हैप्पी, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते और बहुत ज्यादा सुखी भी नहीं होते। भक्त जानता है ऐसा नहीं किया वो इतना सारा सुख मिल सुविधा मिल गया तो वो नाचने लगता है कूदने लगता है, ऐसा नहीं होता है उसका। तो उसको पता है कि जैसे आया है वैसे जा भी सकता है। अचानक से बहुत ज्यादा दुख आ गया, कई बार देखा मैंने डिवोटीज को इतना पेन आ जाता है तो पेन में वो कुछ नहीं कर सकते, वो मंगला आरती बंद कर देते हैं, माला करना बंद कर देते हैं, कुछ भक्तों का संग करना बंद कर देते हैं। उसको पूछते क्या हो गया भाई, अरे इतना कष्ट आ गया, इतना दुख आ गया, ये रोना लगता है सब। लेकिन वो ऐसे भी डिस्टर्ब नहीं होते क्योंकि वो पता है जो आया वो कुछ समय के बाद चला जाने वाला है, तो ये रहने वाला नहीं हमेशा। तो इसलिए भक्त ना अधिक सुखी होते हैं और ना ही अधिक दुखी होते हैं, स्थिर रहते हैं क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर तो हर एक अस्वस्थ ही है, आना जाना तो रोज का काम है और वास्तव में ये शरीर तो मैं हूं नहीं, जितना दिन है शरीर उतना दिन ठीक है, जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा तो दूसरा कोई शरीर आ जाएगा। तो इसके पीछे इतना क्या मन लगाना, तो इस बात को स्थिर रहता है। सो वास्तव में यही सुख की स्थिति है, ये सुख की स्थिति है वास्तव में। तो योगी जो होता है, भक्त जो होता है वो इस स्थिति में रहता है। सो आगे वाला श्लोक पढ़िए।
ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता अपितु तो सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है।
वो एकाग्रचित्त होता है, स्थिर रहता है, इसलिए उसको असीम सुख प्राप्त होता है। जब तक वो इंद्रिय भोग में पड़ा रहेगा, उसको पकड़ कर रखेगा, तब तक उसके असीम सुख का संभावना नहीं है। लेकिन जब इस तरह से मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं द हाइएस्ट प्लेजर इन टर्म्स ऑफ मैटर इज सेक्स प्लेजर, द होल वर्ल्ड इज मूविंग अंडर इट्स स्पेल एंड द मटेरियलिस्ट कैनॉट वर्क एट ऑल विदाउट दिस मोटिवेशन, बट ए पर्सन एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन वर्क विद ग्रेटर विगर विदाउट सेक्स प्लेजर विच ही अवॉइड्स, दैट इज द टेस्ट इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन एंड सेक्स प्लेजर गो इल टूगेदर। तो प्रभुपाद कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी एक जगह कहा कि जब कोई व्यक्ति ऊंचा स्वाद मिलेगा तो नीचा स्वाद छोड़ देगा, जब कोई मिठाई खाने को मिलेगा तो मिट्टी को क्यों खाएगा, है ना, मिठाई उसको मिलेगा खाने के लिए। तो इसका तात्पर्य यही है, प्रभुपाद तात्पर्य ने बहुत सुंदर भाव से लिखा कि अगर संसार में सबको बोल दिया जाए ना कि आज से 2019 में इस एक साल तक सेक्स प्लेजर, सेक्स का जो सुख है सबको बंद, कोई किसी को सुख मिलेगा नहीं, किसी को अनुभव मिलेगा नहीं, यू नो एक साल के सिर्फ बंद, आप देखो सबका सारा कर्म चक्र अटक जाएगा, सब लोग काम करना छोड़ देंगे, पीपल आर उनका उनकी लाइफ का कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। फिर यही मोटिवेशन है जिसके लिए लोग इतना काम करते हैं, लोग इतना मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और उत्साह होता है उनके जीवन में, रोज सुबह नहा धोकर उठ करके दौड़ने, क्यों कैसे दौड़ते हैं ये लोग, उनका उत्साह है। लेकिन जिस दिन वो जो गाजर है वही तला गया सामने से, तो गाजर तो वो लटकता हुआ गाजर ही बच्चे का ही नहीं तो क्या दौड़ेगा वो, गधे के सामने गाजर है तो दौड़ता रहता है गधे की तरह, लेकिन वो गाजर ही हटा दिया जाए तो कैसे दौड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि वो गाजर हटाने के बाद दौड़ता है कोई, वो उसका परीक्षा है। इसलिए भक्त जो है वो इस गाजर को हटा चुके हैं और फिर भी इतना मेहनत करते हैं कि जितना मेहनत तो एक साधारण कर्मी भी नहीं कर पाता, ये उसका परीक्षा है। क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि ये इंद्रिय भोग और आध्यात्मिक जीवन ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, मीन्स अगर कोई ये सोचे कि मैं भक्ति के मार्ग में भी रहूंगा और इंद्रिय भोग भी करता रहूंगा तो अंत में मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि जब तक आप इंद्रिय भोग करते हो या उसके समय सोचते हो आप शरीर के स्तर पर कार्य करने लगते हो, आत्मा के स्तर पर नहीं। और जब तक आप शरीर के स्तर पर कार्य करने लगते हो तो आपको दूसरा शरीर प्राप्त होना अवश्य है। तो इसलिए शरीर के ऊपर कार्य करने वाला व्यक्ति होता है और विशेष करके इंद्रिय भोग जैसा हमने तीसरे अध्याय में कहा था, काम आपके ज्ञान को हटा देता है, आपकी भक्ति को हटा देता है, कृष्ण को आपके मन से हटा कर वहां बैठ जाता है। क्योंकि कृष्ण और काम दोनों एक साथ में बैठ सकते हैं, या तो कृष्ण हटेगा या काम हटेगा, दो में से एक हटेगा। सो इसलिए जमुनाचार्य कहते हैं कि जिस दिन से प्रभुपाद जी का बताए कि जिस दिन से मेरा मन कृष्ण के चरणों में लगा है उस दिन से इंद्रिय भोग का विचार भी कभी आता है तो उस विचार पर भी मैं थूक देता हूं। जिसमें जिस दिन से मेरा मन चरणों में लगा है भगवान के चरणों में, ऐसा विचार आता है कि क्या ये महाअमृत कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण के चरण का अमृत, और कहां वो तुच्छ सड़ा हुआ जहर, और मैं उसके पीछे भाग रहा था। इसलिए उसका विचार आते ही मैं उसके ऊपर थूक देता हूं कि छी वो निम्न रस है, ये उत्तम रस है, तो हम उत्तम को क्यों ना पकड़े। और सही ढंग से देखा जाए, प्रभुपाद बताते एक जगह पर कि जो सही सुख है वो है आत्मा से जुड़ा हुआ सुख, वो हमेशा रहता है, शरीर से जुड़ा हुआ सुख नहीं। शरीर से जुड़ा हुआ सुख दुख का कारण है क्योंकि अस्थाई है, और आत्मा से जुड़ा हुआ सुख जो है वो सुख से, तो आत्मा से जुड़ा हुआ वास्तविक सुख रास लीला है या कृष्ण लीला है, या आत्मा से जुड़ा हुआ सुख है जिसमें आपके शरीर की इंद्रियों का कोई महत्व नहीं है, इसमें केवल प्रेम का महत्व है जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए दैट इज द हाईएस्ट प्लेजर इन दिस स्पिरिचुअल रियलिटी। मटेरियल वर्ल्ड में तो बाकी हम जो कुछ देखते हो तो आता है चला जाता है, इसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है। सो यस, टेक्स्ट नंबर 25 में भगवान उन लोग के विषय में बताते हैं, 22 में भगवान उन लोग के विषय में बताते हैं कि क्यों इंद्रिय भोग जो है या इच्छा है मूर्ख है। आगे वाले श्लोक में
जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट
22 नंबर
बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता।
यस, साफ बता दिया भगवान एकदम स्पष्ट। हाँ, तो जब उसको अपने बुद्धि को स्थिर करना पड़ता है कृष्ण भावना रूप में, क्या बताया, इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक पार्ट इन द सोर्स ऑफ मिजरी, दुख योना क्या है, यही संस्पर्श जाप होगा, ऐसा है श्लोक, कैसा है, दुख योना या ये वही संस्पर्श जाप होगा, संस्पर्श जाप होगा, इसका अर्थ होता है इंद्रिय जन्य, इंद्रियों से जुड़ा हुआ, यही संस्पर्श जाप होगा। दुख योना या योनि का अर्थ होता है उद्भव, जहां से उद्भव होता है सब कुछ, जहां से जन्म होता है योनि का अर्थ होता है। तो दुख योना या दुख को जन्म देने वाला है, वो दुख की माता है, क्या, भौतिक इच्छा, इंद्रिय भोग की इच्छा दुखों की माता मानी जाती है, सारे दुख वहां से क्रिएट होते हैं, वहां से प्रकट होते हैं। सो इंद्रिय भोग का दूसरा नाम है दुख, केवल नाम अलग अलग बाकी है दोनों समान। सो नायम नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजामये तपो दिव्यम पत्रका एम सत्वम सुद्यंत। हाँ ये तात्पर्य में है। ओके पढ़िए ट्रांसलेशन।
हे पुत्रो इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको।
यस क्या है इसका अर्थ? दायम देह देह भाजाम लोग कष्टान कामान, ये जो सुख मिलता है ना बहुत मेहनत करने के बाद, ये कष्ट पूर्वक कमाया गया सुख वो क्या है? अर्थ विद्भुजाम। विद्भुजाम का अर्थ होता है जो सुअर खाता है मल, गर्मा गर्म मल गटर का। तो ये विद्भुजाम जो उसके साथ उसकी तुलना के लिए, और सुअर के लिए तो बड़ा अच्छा है वो, कितना कितना महान कार्य मैं कर रहा हूँ, कितना मेरे जैसा कोई है कि मैं 5-star होटल में रहता हूँ, महंगी गाड़ियों में घूमता हूँ, सुंदर मेरा बहुत सुविधाएं है, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन वो क्या कर रहा है? सुअर का खाना खा रहा है। तो उसको पता ही नहीं, इसने तपो दिव्य, हे मेरे पुत्र तपस्या करो, तपो दिव्य पुत्र का है ऐसा। तो मनुष्य जीवन तपस्या के लिए, इंद्रिय भोग करना है तो बाकी के 84 लाख की बाकी की जो योनियां है 80 लाख योनि, उसमें यही तो किया तुमने, किया क्या और? गाय गधा बना, कुत्ता बना, सुअर बना, बिल्ली बना, इसमें करना क्या था? और इंद्रिय भोग भी तो किया है, तभी मनुष्य जन्म मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्व, इस जन्म में तपस्या करो। आपका ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये तीनों आश्रम तपस्या पर बल देते हैं। केवल गृहस्थ आश्रम एक ही ऐसा आश्रम है जिसमें थोड़ी बहुत छूट दी गई है, लेकिन वो भी शास्त्र के आधार के ऊपर, मनमाने ढंग से नहीं, इंद्रिय भोग की। तो क्या बताया जाता है? इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके 4 आश्रम में से 3 आश्रम में तो तपस्या करनी है, और 1 आश्रम है उसमें भी आपको नियमों का पालन करना है और सारी जिम्मेदारियों को उठाना है। तो तपस्या ये मूल चीज है भक्तों के लिए। ओके नेक्स्ट वन।
यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वियोगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है।
हाँ, ये तो माया का बहुत सारा प्रभाव हम पर आता है। तो प्रभु जी आपने कहा कि इंद्रियों की इच्छा को पूरा नहीं करना है, इससे अच्छा है भगवान की शरणागत होकर के उनकी सेवा करें। तो ये इंद्रियों के जो पुशिंग आती है, डिमांड आती है कि लाओ हमें भोग करना है, भोग करना है, ये कब तक सहन करना पड़ेगा? कब तक ये ऐसा मन और इंद्रियों को, क्या ये माया के अपना परिश्रम छोड़ देगी क्या? ऐसा कोई दिन आता है कि आपने 30-40 साल हो गया, अब माया भी थक गई अब नहीं आऊंगे, बोले ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं, अब नहीं आऊंगे तुम्हारे पास, ऐसा होता है?
और माया और बलवती होती
है। या फिर ऐसा होता है कि एक दिन हम रात को सोए थे, दिन में उठे तो पता पड़ा मैं तो मुक्तात्मा बन गया हूँ अब तो माया मेरे सामने आ ही नहीं सकती, ऐसा सब हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो इसका सिंपल आंसर भगवान यहाँ पर देते है, ये पुशिंग, ये सहन करना जो है केवल कब तक चलेगा? जब तक आप शरीर त्याग नहीं करते। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक ये माया की आक्रमण चालू रहेगी। इसलिए ऐसा नहीं कि हाँ, लेकिन फिर से आएगा, इसलिए आध्यात्मिक शरीर लेना चाहिए। भौतिक शरीर में तो रहेगा ये प्रॉब्लम, आध्यात्मिक शरीर लेना चाहिए।
मरते दम तक कोशिश करो, कोशिश करो इसको रोकने की।
हाँ,
अगर हो गया तो कल्याण हो गया।
हाँ, बीच में भी हो गया तो भी चालू रहेगा वो, तो उसका काम तो चालू रहेगा।
अगर त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेग को सहन कर ले और तथा इच्छा में क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाए तो संसार से सुखी हो गया।
वेग बंद नहीं होंगे, चाहे आप संन्यास भी ले लो, वेग बंद नहीं होंगे,
सहन करना
होगा, वो तो चलता ही रहेगा। जैसे समझ लो कि आप 5 साल के थे तभी भी ठंडी का मौसम आता था, गर्मी का मौसम आता था, और आप 50 साल के हो गए फिर भी ठंडी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है, और जब आपका शरीर छूटेगा उस दिन भी ठंडी गर्मी या कुछ ना कोई मौसम होगा, तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन इससे हमें प्रभावित नहीं होना है। इस वेगो को हमें प्रभावित नहीं होना है। आपको लगेगा प्रभु ये सहने वाली बात थोड़ी मुश्किल है, तो सहना पड़ेगा। अगर आप सहोगे नहीं तो आपको, जैसे कैसा है, डॉक्टर ने कहा कि आज के, अगर कोई दांत का डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि तुम ये सॉलिड चीज मत खाना, तुम्हारी ट्रीटमेंट चल रही है। और मैं बहुत मैं सॉलिड चीज ही खाता हूँ, मैं बादाम भी मुंह से तोड़ता हूँ उसे, लेकिन तुम्हारे दांत में समस्या है, इसलिए कम से कम एक महीने के लिए तुम सॉलिड चीज नहीं खाओगे। परिणाम यह आएगा कि तुम्हारे दांत मजबूत हो जाएंगे, एक महीने के बाद तुम सॉलिड चीज अच्छे से खा सकते, लेकिन एक महीने तुम नहीं खा सकते। तो भगवान हमें कहते हैं ये इस लाइफ में ये इंद्रिय वेगों को सहन कर लो, सॉलिड चीज खाने की इच्छा हो तो मत खाना, नेक्स्ट लाइफ तुम्हारे लिए सबसे उत्तम सुख मैंने तुम्हारे लिए छोड़ कर रखा है, वो तुम्हें सबसे अच्छा सुख प्राप्त होगा, इस लाइफ को थोड़ा मैनेज कर लो, टॉलरेट कर लो इसमें, तो फिर आगे जाके तुम्हारा सब, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान हम सॉलिड फूड खाना चाहते हैं, तो ये समस्या है। हम रोगग्रस्त अवस्था है ना मेरी, जैसे रोगी होता है तो उसको बोला जाता है कि देखो भैया तुम्हारा तबियत ठीक नहीं है, तुम तली हुई चीजें पकौड़े इत्यादि नहीं खा सकते, तुम अस्पताल से डिस्चार्ज करोगे फिर खाना जो खाना, राइट। तो आपको लगे यार कब अस्पताल खत्म होगा, कब, मैं तो कुछ खा नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, और मैं तो खाने का इच्छा हो तो मैं तो मंगवा लूंगा कुछ भी ऐसा करके, तो कुछ नहीं हो सकता उसका, वो ठीक नहीं हो पाएगा, है ना, उसको लंबा रहना पड़ेगा अस्पताल में। लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टर ने बोला डोंट डू दिस फिनिश, यू वोंट डू दैट, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा इस दिन को, तो उसमें फिर डिले होता है, हो सकता है कि अर्ली का डिस्चार्ज हो जाए, कि तुमने सही ढंग से पालन किया तो एक दिन पहले तुम्हें अस्पताल से छोड़ दिया जाएगा, क्यों, तुम पहले ठीक हो गए, तो ये पॉसिबल है, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड 23, तो आगे हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। कितने श्लोक बचे, ठीक है, छह बचे, नेक्स्ट टाइम हम लेंगे इसको, और साथ में छठा अध्याय भी शुरू कर देंगे, आज हमने थोड़ा लेट शुरू किया था, 10 इसमें बच गया, आई थिंक ये पीछे चल रहा है।
एक चीज मुझे अभी जब आप बता रहे थे ना कि या तो भगवान श्री कृष्ण या माया में से एक सिलेक्ट करो, ये जो सूफियों में एक कलाम है वो मुझे अचानक याद आया कि वो भी यही कहते हैं कि उनका है कि हम खुदा ख्वा ही है या हम दुनियाए दूं, ये महालस्तो ही ख्यालस्तो महालस्तो जिनो, उसका मतलब यह है कि या तो आप खुदा में लगो या दुनिया में, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दुनिया में भी लगे रहो खुदा में। तो मुझे लगता है, हो सकता है यहीं से कहीं से वो निकाल के
ध्यान
दिया होगा उन्होंने।
हाँ, हजार 1200 साल पुराने, 1500 साल पुराने
शास्त्र का उपयोग तो करेंगे।
हाँ, क्या होगा इन्हीं
में से, कहीं से कि दो में से एक ही,
कई सारी चीजें हैं ऐसी, कई सारी ऐसी चीजें भगवद गीता का आधार पर हम लोगों
ने चाहिए, सूखियों में बहुत मिलता है, और भी कई कलाम है उनके जो लगभग इसी तरह से आते हैं।
अच्छा,
जो इस्लाम से बिल्कुल अलग है।
अच्छा, वो इस्लाम से अलग है,
कुरान, हाँ, जो मतलब है तो उसी ग्रुप में उसी रीजन के हैं, बट दैट्स टोटली डिफरेंट। सूफी लोग जो होते हैं,
हाँ,
तो उनका एक कलाम मुझे याद आया कि दोनों चीजें एक साथ और भगवद गीता में तो स्पष्ट कई जगह कहा है कि
साथ में एक साथ नहीं हो सकता। ये
सूफी संत भी होते हैं,
हाँ, सूफी फकीर।